समय सार लेक्चर नंबर 6 7 8। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धा आत्मने नमः। नमो अरिहंताम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोए सवसाहूणम्, नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे, वन्दित्तु सर्वसिद्धे दुवमचलमनोवमं गदिं पते, वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुदकेवली।
यह कुंदकुंदाचार्य भगवान का समय सार है और इस समय सार के हम गाथा नंबर 308 और 311 ये चार गाथाओं को हम देख रहे हैं। यहाँ जो मूल बात है कि जो क्रमबद्ध पर्याय नामक जो कोई अपूर्व सिद्धांत है, उस सिद्धांत का ओरिजिन यहाँ हमें आजकल के उपलब्ध शास्त्रों में दिखाई देता है। यहाँ भले शब्द क्रमबद्ध यह लिखा न हो, लेकिन क्रम नियमित यह शब्द तो आचार्य अमृतचंद्र ने इसमें टीका में लिखा है। और इस पर से किसी ने भी लिखा हो, उन्होंने तो कुंदकुंदा आचार्य के गाथा ऊपर से ही ये बात निकाली है। और कुंदकुंदा आचार्य ने ये बात तो जिनेंद्र भगवान के वाणी से निकाली है, ख्याल में आया ना। तो वो देखते देखते हम आए हैं पृष्ठ क्रमांक 14 नंबर पर, ये तीसरा पैराग्राफ है, वहां से शुरू करते हैं। प्यारे, कोई वड़ी क्रमबद्धनी ओथ लईने कहे छे, वितरागतानी पर्याय जे काळे थवानी हशे ते काळे ते उत्पन्न थशे, एम के एमा द्रव्य दृष्टिनु शू प्रयोजन छे। या ये क्यों प्रश्न उठा है, तो ऊपर बात ये हुई थी ना कि जब जीव की पर्याय बुद्धि मिट जाती है और द्रव्य दृष्टि होती है तब उसे वितरागता होती है, ऐसी बात निकली थी। लेकिन उस समय कोई ऐसा जीव जिसके क्रमबद्ध पर्याय की बात सही बैठी नहीं है, ऐसा जो क्या बात निकालते हैं कि वितरागतानी पर्याय, यानी उन्होंने क्या क्या क्रमबद्धनी ओथ लईने, यानी क्रमबद्ध का आश्रय लेते हुए, उसका सहारा लेते हुए क्या बात निकाली उसने कि वितरागतानी पर्याय जे काळे थवानी हशे ते काळे ते उत्पन्न थशे। और आगे क्या बताते हैं, ए मां द्रव्य दृष्टि ने शू प्रयोजन छे, यानी वो वितरागता होने के लिए द्रव्य की दृष्टि करने की कौन सी गरज है। अरे जिस समय जो होना सो होगा, ऐसा ही लोग कहते हैं, जब हमको सम्यक दर्शन होना है सब होगा, जब हमारा पुरुषार्थ होना है तो होगा। हाँ बिल्कुल सही है, जब होना है तो होगा, लेकिन वो 100 नंबर की सीढ़ी पे चढ़ना है हमको या 100 नंबर के माले पे जाना है लिफ्ट में, तो जब आएगी, अरे आएगी कब, कि जब वो 99 वाली उसकी पहले आएगी। 99 वाली कब आएगी, जब 98 वाली आएगी, यानी ऐसे क्रम से एक के बाद एक आएगी तो ही 100 की आएगी। इसका निर्णय होता है जब ही तो हम जाके लिफ्ट में बैठते हैं, ऐसा तो कोई बोलता नहीं है कि चलो अभी हम डायरेक्ट 100 में जाएंगे। वहां तो गपचुप लाइन से 1 2 3 4 करके 100 तक पहुंचता है, ख्याल में है ना। और यहाँ क्या कह रहा है कि जब वितरागता होनी होगी अरे नहीं भाई, उसके लिए तुझे द्रव्य दृष्टि करनी पड़ेगी, वो बात के लिए वो राजी नहीं है, क्योंकि उसने क्या है क्रमबद्ध सुना है ना, तो जब जिस समय जो होना है भगवान ने देखा है तब होगा, ऐसा करके निष्क्रिय हो जाता है। अन्य में पुरुषार्थ करना चाहता है लेकिन स्व को जानने में पुरुषार्थ है ये पता ही नहीं उसके। क्या कहा देखो, हा वीतरागता नहीं पर्याय तो ते जे काले थवानी अशे ते काले ते उत्पन्न थशे ए तो एम ज छे, पण एवो निर्णय कोणी सन्मुख थईने कर्यो? आहा त्रिकाळी शुद्ध एक न्यायक स्वरूपनी सन्मुख थईने हूँ आ एक चिन्ह मात्र ज्ञान मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वभावी वस्तु आत्मा छू एम जेने निर्णय कर्यो तेने जे काळे जे पर्याय थवानी हशे ते थशे एम यथार्थ निर्णय होय छे, ये वास्तविकता है। पण अने तेने ज क्रमबद्ध वितराकता थाय छे, बाकी रागनी रुचि छोड़े नहीं। यानी इसको वितराग होना है, वितरागता जब होनी से होगी, हम तो जब ही होंगे वितराग, पण इसको क्या कह रहे हैं, रागनी रुचि छोड़े नहीं अने वितरागता जे काळे थवानी हशे त्यारे थशे एम कहे ए तो मिथ्या दृष्टि छे, एने तो क्रमबद्ध राग नुज अज्ञान में परिणमन थया करे छे। वो भी कैसा है परिणमन, क्रमबद्ध है वो। शू कीधु, एने तो क्रमबद्ध राग नुज अज्ञान में परिणमन थया करे छे। आमा समझाणु काई एम के कई पद्धति के कई पद्धति कहवाय छे, एनी काई गंध आवे छे के नहीं, गंध आवे छे के नहीं, उसमें कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या? नहीं, आहा पूरु समझाई जाए एनु तो तत्काल कल्याण थई जाए भी बात छे। यानी क्या होगा, हाँ समय दर्शन होगा। जो कभी कभी ऐसा भी स्वामी जी कहते थे, समझाए छे काय तो हाँ क्या हाँ प्रभु या जी हाँ प्रभु ऐसा कुछ बोलते थे, तो कहते थे कि अरे समझाई जाए तो कल्याण थी जैसे, कल्याण थी जैसे कहो या ये लिखा ना तत्काल कल्याण थी जैसे। जुओ द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु आखी आत्मा छे, तेमा ज्ञान दर्शन आनंद आदि अनंत गुण थी रचायेलू जे त्रिकाळी ध्रुव द्रव्यमान छे, ते द्रव्य छे। द्रव्यमान का अर्थ द्रव्य, अने प्रति समय उत्पाद वेरू परटती जे अवस्था छे ते पर्याय छे, तेमा गुणों छे, ते अक्रम अर्थात एक साथे रहनारा सहवर्ती छे, अने पर्यायो क्रमवर्ती छे। ये समझ में है ना, सहवर्ती अने क्रमवर्ती। हाँ दिव्या बेन, आपको मालूम है सहवर्ती और क्रमवर्ती? नहीं नहीं नहीं, ये लाइन में मत देखो। सहवर्ती यानी एक साथ रहने वाले, यानी हमारे में मान लो 10 गुण है तो पहला गुण कौन सा होगा? तो नहीं, सभी एक साथ है तो उसको एक साथ रहने वाले सहवर्ती। एक साथ यानी बाद बाद में आ गए और फिर बाद में रह गए, ऐसा भी नहीं। एक साथ रहते ऐसा नहीं, अनादि से वो सहवर्ती है, एक साथ ही है, क्योंकि गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते ना हम। और क्रमवर्ती यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद होना, पर्याय हमेशा एक ही गुण की तीन काल की पर्याय एक साथ नहीं होती, एक के बाद एक के बाद एक के बाद होगी।
यानी दो समय वाली पर्याय एक समय में विद्यमान हो ऐसा नहीं होता, गुण सभी एक समय में विद्यमान है एट एनी समय, पर्याय एक समय में। अब हम एक की बात करें तो एक समय में एक पर्याय, दूसरे समय में दूसरी पर्याय, एक समय की पर्याय दो समय नहीं टिकेगी और दो समयों की पर्याय एक समय में नहीं होगी।
यानी आत्मा में अनंत गुण है वो सब एक साथ है, और एक गुण के तीन काल की पर्याय अनंत है वो एक के बाद एक होगी। अब आपको एक साथ रखना है तो अनंत गुणों की एक समय की तीन का एक समय की परे एक साथ होगी, लेकिन वो एक समय पूर्ति रहेगी, उसकी बात यहाँ नहीं है। क्या कहा? थर्ड लाइन ना, लास्ट पैराग्राफ। तेमा गुणों छे ते अक्रम, अर्थात एक साथे रहनारा सहवर्ती छे, अने पर्यायो क्रमवर्ती छे। ते पर्यायो एक पची एक थती क्रमबद्ध थाय छे, एम वात छे। मतलब के जीव मा जे पर्याय जे समय थवानी होय ते तेना स्व अवसरे ज प्रकट थाय छे। शुं कीधुं? वर्तमान वर्तमान जे पर्याय प्रकट थाय ते तेनी उत्पत्ति नो काळ छे, जन्म क्षण छे। प्रत्येक समय प्रकट थती पर्याय ते तेनी जन्म क्षण छे। सूक्ष्म वात छे, जन्म क्षण छे, अने वह उसी समय उत्पन्न होनी है, वो कभी आगे पीछे कभी होगी नहीं। प्रत्येक समय पर प्रकट थती पर्याय ते तेनी जन्म क्षण छे। सूक्ष्म वात छे, पण आ सर्वज्ञ परमात्माना पेटनी वातु छे प्रभु। आमा बे मुद्दा रहेला छे। अभी दो पॉइंट कौन से हैं बताएंगे? जीवनी जे समय जे पर्याय थवानी होय ते समय तेज थाय ए एनी काल लब्धि छे। क्या कहा? बताते हैं, जे समय जे पर्याय थवानी होय ते समय तेज थाय ए एनी काल लब्धि छे, अने जे पर्याय थाय ते बाह्य निमित्त थी एना द्रव्य गुण थी अने तेनी पूर्व पर्याय ना व्यय थी निरपेक्ष छे। ये किसकी बात चल रही है? कि प्रत्येक पर्याय का जन्म क्षण होता है। तो इस जन्म क्षण होता है यानी क्या? कि जिस समय में जो पर्याय होनी है वही होगी। कब? जिस समय होनी है तेज समय, अगड़ पाछड़ नहीं था। मान लो अभी 8:01 पर जो पर्याय होनी है वही होगी, वह 8:49 पर होने वाली है, ऐसा भी नहीं, ख्याल में? और एक मिनट और एक समय या एक सेकंड तब भी नहीं होगी, वह तो बिल्कुल डॉट टू डॉट होगी। तो उसमें क्या बताया? वह उसकी काल लब्धि है, यानी हम कहते ना, अरे उसकी काल लब्धि पक्की नहीं है। तो काल लब्धि का अर्थ हम ऐसा समझते कि अभी उसको कुछ चीज मिलने वाली है, नहीं। जिस समय जो पर्याय होती है वह उस पर्याय की काल लब्धि है। अब दूसरी बात क्या कहते हैं? वो जो पर्याय हो रही है वह बाह्य निमित्त से हो जाए, हमको सम्यक दर्शन होना है तो काल पाक्यों नती शू करें, ऐसा लोग बोलते ना। तो कह रहे काल पाक्यों नती, ये तो परकारणी बात है, क्या छे? हाँ, यहाँ तो कह रहे देखो देखो, यहाँ तो अभी दूसरा पॉइंट में बहुत बढ़िया बात बताते हैं। ये कह रहे कि जो पर्याय होनी है वो बाह्य निमित्त से, अभी हम यहाँ सम्यक्तों की बात करें ना, सम्यक दर्शन की, तो सम्यक दर्शन जो हुआ है वो बाह्य निमित्त है, यानी इसमें किसको लेना? कि देव गुरु शास्त्र से हुई है? नहीं। कि कर्मों का उपशम क्षय या क्षयोपशम हुआ है? तब भी नहीं। तो क्या कहते हैं? तो वो तो दोनों बातें छोड़ दी उन्होंने। अब आगे आते हैं कि पर्याय निमित्त ही न था, वो अंतरंग निमित्तों को भी लिया और हमने बहिरंग निमित्तों को भी लिया, उससे भी वो कार्य नहीं होता है। और क्या कहते हैं? वह जो द्रव्य है, कौन सा? सम्यक दर्शन जो है वो कौन से गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण कौन से द्रव्य में रहता है? तो कहते हैं वो उसका द्रव्य का जो द्रव्य है या गुण है वह भी उस पर्याय को नहीं उत्पन्न करता है, क्योंकि हमको जन्म क्षण देखना है ना। तो पर्याय का जो कोई उत्पत्ति का काल है, काल लब्धि है, उसी क्षण में वो होएगी, वो अपने स्वयं से होगी, ना द्रव्य से होगी ना पर्याय से होगी, बाह्य निमित्त से भी नहीं होगी। अब उसके आगे ऐसा समझा रहे हैं कि अब जो मान लीजिए सम्यक दर्शन 100 की पर्याय पे हुआ है, तो कहते कि 99 नंबर का व्यय हुआ जब ही तो ये उत्पन्न हुई, तो व्यय उसका कारण होना चाहिए। बोलते नहीं, पूर्व पर्याय के कारण से भी वो हुई ऐसी नहीं है। तो 100 नंबर की जो हमारी यहाँ देखी हुई सम्यक दर्शन की पर्याय है, वह तो अपना स्वयं का जन्म क्षण से हुई है। डॉक्टर साहब ख्याल में आती बात? देखो यहाँ पहले क्या बताया, पहले देखो ये हम 14 नंबर के पृष्ठ पर आखिरी देखेंगे, नीचे से तीसरी लाइन, वर्तमान जे पर्याय प्रकट था ते तेनी उत्पत्ति नो काल छे जन्म क्षण छे। प्रत्येक समय प्रकट थती पर्याय ते तेनी जन्म क्षण छे। तो प्रत्येक पर्याय अपने स्वयं से उत्पन्न होनी है, तो हमने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, पैसे कमाने लायक किया, ये बात कहां से आई? तुम जानते नहीं भाई, हमने हमारे बेटी के लिए इतना ढूंढा 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 कौन वर, और ऐसा बढ़िया वर हमें जमाई मिला कि हमारे सब सारे हमारे पुण्याई का फल है, और आगे आगे तो दूसरे भी ढकलना होता है। अरे उसको अच्छा पति मिला, वो तेरे पुण्य से मिला कि उसके पुण्य से मिला? पर अपन तो सब अपने तरफ लेते ना, खींचते। अरे अभी मान लो किसी का बुरा हुआ, हाँ, तो उसके लिए मैंने उसका बुरा करवाया ऐसा कोई नहीं बोलेगा। अरे क्या करे भाई, उसका नसीब ही ऐसा था ना, हमने बहुत समझाया ऐसा मत कर, धंधे में डाला पैसा और गया, सुनता कौन है हमारी, फिर ऊपर ये। यानी यहाँ ये बताते हैं भाई, जो जिस समय जो कार्य होना है, जिस समय जो पर्याय होनी है, वह उस समय उसका जन्म क्षण है। बस वह उस जन्म क्षण में ही होगी, ना पूर्व पर्याय से होगी, ना अपने गुण से होगी, ना अपने द्रव्य से होगी, ना बाह्य निमित्तों से होगी। देखो कितनी, जिसको कहेंगे ना उत्तमोत्तम स्वतंत्रता बताइए, ये बातें जो स्वामी जी ने ऐसे खोल के दिखाई है ना, उसका जवाब नहीं। क्या लिखा देखो, देखो दूसरा पॉइंट, जे पर्याय था ते बाह्य निमित्त तेना द्रव्य तेना गुण थी अने तेनी पूर्व पर्याय ना व्यय थी पन निरपेक्ष छे। एटले ए पर्याय ने कोई परनी अपेक्षा नथी। इतनी स्वतंत्रता विश्व में है, इस स्वतंत्रता को हम जानते हुए भी उसके तरफ दुर्लक्षित, मतलब उसको दुर्लक्ष करते हैं, और हम वही वही पुण्य पाप अपना राग द्वेष लोभ की बात करते रहते, कषाय उनसे लिपटे हुए हैं, कषाय में गर्द हो गए। क्या कहते देखो, अर्थात ते पर्याय ने बाह्य निमित्तनी अपेक्षा न थी, एना द्रव्य गुणनी अपेक्षा एने अपेक्षा न थी, अने पूर्व पर्याय ना व्ययनी एने अपेक्षा न थी। जीवनी एक समयनी पर्याय जे विकार रूपे परिणमे ते पोताना षटकारक थी पोते स्वतंत्रपणे परिणमे छे। आ वात 85 कायनी गाथा 62 आवी छे। जीव द्रव्यनी जे पर्याय थाय ते जीव ज छे, अर्थात तेनो करता जीव छे, अन्य द्रव्य नथी, जड़ कर्म नथी। जड़ कर्मनी पर्याय जड़ कर्मना कारणे क्रमबद्ध थाय छे, अने जीवनी पर्याय जीवना कारणे क्रमबद्ध पर्याय छे, क्रमबद्ध थाय छे। द्रव्य पोते ज पोतानी पर्याय ने करे छे, पण भिन्न पदार्थ ते पर्याय ने करे एम त्रण काळमा नथी। अभी हमने पहले देखा था ना कि जीव वो अजीव थी नहीं, ऐसा कुछ बात आई थी ना पहले लाइन में। देखो देखो ये अभी यहाँ तक जो एक्सप्लेनेशन है ना, तो ये केवल एक लाइन की चल रही बात। देखो पेज नंबर 11 पर टीका ऊपर नु प्रवचन लिखा है, प्रथम तो जीव क्रमबद्ध एवा पोताना परिणामाथी उपजतो थको जीव ज छे अजीव नथी। ये जो बात है वो किस तरह से है ये अभी यहाँ पर ये दो नंबर के पॉइंट में हमको समझा रहे। क्या लिखा देखो, द्रव्य पोतेज पोतानी पर्याय ने करे छे, पन भिन्न पदार्थ एटले द्रव्य ते पर्याय ने करे एम त्रण कालमा नथी। तो यहाँ जीव अपने ही स्वयं के परिणामों से परिणमता है, इसलिए जीव ही है अजीव नहीं। ये बात बताई ना, चाहे जीवनी विकारी पर्याय हो के समकित आदि निर्मल निर्विकारी पर्याय हो, ते पर्याय तेना क्रम में थवानी होय तेज थाय छे, अने एमा तेने कर्म वगैरे कोई परकारकोनी अपेक्षा नथी। आवी वात छे। देखो देखो, मतलब कितनी स्पष्ट बात है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। और इतनी बात देखते हैं हम, अरे हम रोजाना ये देखते हैं क्या कि किसी का दिवाला निकल गया, किसी के घर में चोरी हो गई, किसी की मौत हो गई, तो इतना होते हुए भी यानी ये सारा जो कोई संयोग है वो क्षणभंगुर है, यानी कायम टिकने वाला है नहीं। अरे मैं स्वयं उस रुपया में कायम टिकने वाला नहीं हूं, ऐसा इस जीव को कभी प्रतिभासित नहीं होता। ये तो उसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, अभी आपने क्या अभी अभी ऐसा अहो संतो आड़तिया थईने भगवान केवड़ीना घरनो माल जगत ने आपे छे, कहे छे के जो तो खरो प्रभु केवो आश्चर्यकारी माल छे। आहा सर्वन्न देवे जीवनी जे पर्याय जे समय थवानी छे जोई छे ते समय तेज पर्याय थाय छे, अने ते थाय छे तेमा कोई अन्य द्रव्यनी अपेक्षा नथी। अरे ते पूर्व पर्यायना व्ययना कारणे थाय छे एमे नथी। जो भगवान केवड़ी सर्वज्ञ देवना नाम थी पर्याय ने क्रमबद्ध सिद्ध करवी ए तो परथी सिद्ध करवानी वात छे, अने पूर्व पर्यायना व्यय पूर्वक वर्तमान पर्याय थई एम केवू ए पन परथी पर्याय ने सिद्ध करवानी वात छे, केम के पूर्व पर्याय वर्तमान पर्याय नु पर छे। क्या कहा, वर्तमान पर्याय ये स्व है और उसके लिए पूर्व पर्याय है वह पर है, तो इसलिए पर से कार्य होगा ये भी बात नहीं है। क्या कहा देखो देखो, वास्तव में तो जे समय जे पर्याय विकारी के निर्विकारी प्रकट थाय छे तेते काले पोताना कर्ता कर्म करण आदि षटकारक थी स्वतंत्रपणे प्रकट थाय छे। अहो आ अलौकिक सिद्धांत छे के जीव पोतानी क्रमबद्ध एक एक पर्यायना षटकारक थी पोतानी तेते पर्यायपने उपजतो थको जीव छे अजीव नथी। देखो एक वो जो लाइन है ये अभी हम 11 नंबर भी देखे थे, अभी 15 नंबर का आखिरी ये आ गया। जब तक उसी को कितनी सहजता से और सरलता से सिद्ध कर रहे हैं। पापू ते बार लौकिक मां घणू घणू सांभळ्यू होय तेनाथी आ तद्दन जुदी वात छे। जो पांच वात अहींथी मुख्य बहार आवी छे, अहींथी अने कहांथी सोनगढ़ से, याने स्वामी जी ने पूरा विचार करके जो ये पांच बात जो मुख्य है ये पांच बातों को जो समझेगा उसको शास्त्र समझने में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी।
वो कभी ऐसा नहीं कहते कि मैं ये मेरे से ये बात हुई है ज्यादा एक्सप्लेन हुई अहीं थी आवी छे, ऐसा कहते मैंने ऐसा किया मैंने ये बात बताई मुझे ये हंसी, तो ऐसा कभी नहीं कहते थे। कभी प्रवचनों में वो ऐसे मैं का वापर नहीं करते थे, ये अहीं से ये बात निकली ऐसा कहे।
निमित्त एक उपादान यानी निमित्त उपादान निश्चय व्यवहार और ये क्रमबद्ध पर्याय
हमेशा वो कहते भी ये जो पांच सिद्धांत जिसने बरोबर अच्छी तरह से पकड़ लिए जान लिए तो उसका बेड़ा पार। यानी इतनी बातों का निर्णय होना ही चाहिए।
तो वह शास्त्र समझे, अपने स्वरूप को समझे सही रूप से। निमित्त छे ते परवस्तु छे ते उपादान मां कहीं करे नहीं। निमित्त छे खरु एना अस्तित्व अस्थिपनानो निषेध नथी, पण ते उपादाननी पर्यायनू काई पण करे नहीं। तेम व्यवहार छे ते निश्चयनू काई करे नहीं, केम के व्यवहार छे ते पण निमित्त छे। व्यवहार छे करो पण व्यवहार निश्चयनू काई करे नहीं। आ पांचमो आ क्रमबद्धनो विषय, प्रत्येक द्रव्यनी सर्व पर्यायो तेना थवाना काळे स्वतंत्रपणे होता थी ज क्रमबद्ध थाय छे। यहाँ क्या कहा, जे पर्याय छे ते तेना काळे थाय छे, अने ए पण स्वतंत्रपणे, एटले बीजा कोईनी अहींया गरज नथी, अपेक्षा नथी, ने अपेक्षा राखे तो थवानुं ही नथी, અને એ પણ બધી ક્રમસર થશે, એકના બાદ એક થશે, તેમાં કઈ આગુ પાછું કદી થાય નહીં। હવે એક છઠ્ઠી વાત બહાર એમ વાત આવી છે કે પર્યાય અશુદ્ધ હોય તો દ્રવ્ય પણ અશુદ્ધ થઈ જાય। એ લોકો કી એસી ગલત માન્યતા હૈ, એ છઠ્ઠી ભાગ ઇનકી નહીં હૈ, ક્યું આગે લખા હૈ, પરંતુ આ માન્યતા યથાર્થ નથી। लिखा है ना, क्या बात कर रहे हैं वो, कि पर्याय अशुद्ध होगी तो द्रव्य भी अशुद्ध हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वस्तु जे द्रव्य छे हे तो अनादि अनंत एक रूप पवित्रता नो पिंड छे, विकारी निर्विकारी सर्व पर्यायों ना काले द्रव्य तो शाश्वत एक रूप शुद्ध छे। अरे तीव्र मिथ्यात्व ना काले पन द्रव्य एटले वस्तु तो जेवी छे तेवी ज शुद्ध छे। प्रश्न, तो शुद्ध अशुद्ध द्रव्य एम कहे छे ने? हा, पण ए तो पर्याय अपेक्षा ए वात छे, शुद्धता ने अशुद्धता ए तो पर्याय नी वात छे भाई। वस्तु एटले द्रव्य तो त्रिकाळ एक रूप शुद्ध छे। अरे पोते कोण छे, केवो छे, केवड़ो छे, एनी पोताने कई खबर न मळे, अने बधी परनी मांडी छे, याने सब पर में ही वो मशगूल हो गया है, उसी के अंदर अटक गया है। केव छे ने के घरना छोकरा घंटी चाटे ने पाड़ोशी ने आटो, याने घर के लोग ऐसे भूखे रह गए और बाहर वालों को दे दिया। એમ આપણ પોતાની ખબર કરે નહીં અને બારમાં ઢાપણ ઢોળે, જાને દેવનો દીકરો। પણ ભાઈ એસે હૈ આપણે યહાં ભી લોગ કમ નહીં હૈ, મુંબઈ મેં હા ક્યા કહા, જાને સ્વને જાણ્યા વિના એ બધું તારું ઢાપણ તો નરી મૂળતા છે, પાગલપણું છે બાપુ। ભાઈ તું સાંભળતો ખરો કે આ શું કહે છે? હા કહે છે, પ્રથમ તો જીવ ક્રમબદ્ધ એવા પોતાના પરિણામોથી ઉપજતો થકો જીવ જ છે, અજીવ નથી। જો ત્રિકાળી શુદ્ધ જીવ વસ્તુ છે એ તો ધ્રુવ અપરિણામી છે। અપરિણામી એટલે શું વિરેશભાઈ? અપરિણામી છે, હા તો એનો અર્થ શું? અપરિણામી એટલે શું? ધ્રુવ તો સમજી ગયો, કેમકે વો ધ્રુવ અને અપરિણામી છે। હા બોલો, વર્ણા માટે હા हाँ आप कुछ कह रहे थे भाई? हाँ यहाँ किसकी बात चल रही? सुनो सुनो, यहाँ द्रव्य के दो भाग कर दिए। एक द्रव्य ऐसा जो ध्रुव कायम टिकता हुआ है, ध्रुवत्व है, और जो पर्याय वो उत्पाद व्यय वाली है। तो ये जो द्रव्य है वह कैसा है? अपरिणामी है। उसको दूसरी भाषा में अकर्ता कहेंगे, तीसरी भाषा में निष्क्रिय कहेंगे। आपने ध्रुव बताया था, वो भी बात बराबर है, पर वो तो यहाँ लिखा है। हाँ जी, कूटस्थ भी कह सकते हैं, बराबर। तो यहाँ ये भी बताना चाहते हैं, शू कहो, क्या कहा? सांबर तो खरो, आई शू कहे छे के प्रथम, तो वो तो हो गया। जो थर्ड लाइन, त्रिकाणी शुद्ध जीव वस्तु छे, ए तो त्रिकाण छे ना, तो पर्याय में तो क्या, एक तो हीन दिखता थाय छे, पण जे ध्रुव त्रिकाणी टकनारो जे द्रव्य छे ए तो अपरिणामी छे, परिणामनशीलता नथी एमां, तेमां बदलवू क्रिया नथी, लिखा ना आगे, पण वर्तमान पर्याय छे ते एनी बदलती दशा छे। आई कहे छे ते वर्तमान बदलती दशा, ते वर्तमान एटले वर्तमान बदलती दशा, ते क्रमबद्ध छे। मूल पाठ में क्रम नियमित शब्द छे, तेनो आई क्रमबद्ध अर्थ कर्यो छे। मतलब के जीवनी अनादि अनंत त्रण कारणी जे पर्यायो छे, ते प्रत्येक पोताना स्वकाळे क्रम नियमित एटले क्रमबद्ध प्रकट थाय छे। वळी जीवनी ते प्रत्येक बदलती उपस्थिति दशा पर्याय जीव ज छे, अजीव नथी। अब यहां पर्याय और द्रव्य को एक में करते हुए उसको जीव कहा। देखो नीचे से दूसरे नंबर, जीवनी ते प्रत्येक पर्याय, प्रत्येक बदलती उपस्थिति दशा पर्याय जीव छे, अजीव नथी, इसलिए उसको जीव कह दिया। केते उपजता परिणामों में जीव ज तन्मय छे, पन एमा अजीव तन्मय छे एम नथी। आहा, ते परिणाम अजीवना छे, वाते अजीव थी निबजा छे एम नथी। जीवना परिणाम जीव छे एम अहीं वाच छे। यानी वह परद्रव्य में जाती नहीं है और परद्रव्य की नहीं है, परद्रव्य से होती नहीं है, जीव से ही उत्पन्न होती है, जीव में ही होती है, इसलिए जीव छे ऐसा बताए। हाँ, पर एक बाजू आप कहो छो कि जीव पर्याय ने करे नहीं, अने वड़ी आई कहो छो कि जीवना परिणाम जीव छे, आ केवी रीते? ख्याल में जो अभी आपने मन में प्रश्न खड़ा हुआ था उसी का यहाँ उत्तर दिया तुरंत, मतलब प्रश्न भी पूछा गया किसी से। हाँ, समय सार गाथा 320 मा एम आवे छे के पर्यायनो करता जीव नथी, केम के पर्यायनो करता कर्म करण संप्रदान अपादान ने अधिकरण एवा षटकारकना परिणाम थी जीव स्वतः सहजपने स्वकाळे उपजे छे। जहाँ द्रव्य थी पर्याय ने भिन्न बतावी द्रव्य दृष्टि करावानू प्रयोजन छे, त्रिकाळी द्रव्य स्वभाव सिद्ध करवो छे ने, वो 320 नंबर की गाथा में क्या आने वाली बात है वो अभी बता रहे। वहां तो कह रहे हैं कि यहाँ द्रव्य भिन्न है और पर्याय भिन्न है, ये बात बता रहे, और उस पर से क्या करना चाहते हैं कि पर्याय पर से नजर हटाते हुए त्रिकाणी अपने द्रव्य स्वभाव पर अपना उपयोग केंद्रित हो जाए, ये प्रयोजन से वहां बताया है कि द्रव्य पर्याय नु करता नहीं, द्रव्य पर्याय नु दाता नहीं, अब वो अक्रिय एक रूप द्रव्य स्वभाव छे, ऐसी बात वहां बताई। जारे आई अभी यहां चालू टॉपिक में 308 से 311 गाथा के बीच में परद्रव्य पर्याय नु करता नहीं और वहां द्रव्य पर्याय नु करता नहीं, ऐसी बात ली। आई परद्रव्य पर्याय नु करता नहीं दाता नहीं एम सिद्ध करवो छे। द्रव्य पर्याय ने अभेद करीने वात करी छे કે જીવ ક્રમબદ્ધ એવા પોતાના પરિણામથી ઉપજતો થકો જીવ જ છે, અજીવ નથી. યાને યહાં દો દ્રવ્યો મેં ભિન્નતા બતાતે હુએ પ્રત્યેક દ્રવ્ય આપણે અપને ક્રમબદ્ધ પર્યાય ઉનસે ઉત્પન્ન હોતા હુઆ આગે બઢ રહા હૈ એસા. જે કાળે ક્રમબદ્ધ જે પર્યાય થઈ તે જીવ છે એમ અહીં કેમ કહ્યું? કેમ કે તે પર્યાયમાં તે કાળે જીવ તન્મય છે, પણ અજીવ તન્મય નથી. જીવ તન્મય હૈ, અજીવ નહીં હૈ. તે પર્યાય પરથી કે અજીવથી થઈ છે એમ નથી. ભાઈ, આ વિકારના પરિણામ જે થાય છે તે કર્મથી થાય છે એમ નથી, તથા સમ્યક દર્શનની પર્યાય થઈ તે દર્શનમોહનો અભાવ થયો માટે થઈ છે એમ નથી. તે કાળે જીવની તે પર્યાય જીવ સ્વરૂપ છે. લ્યો, આવી વસ્તુસ્થિતિ છે. ભાઈ, જ્યાં જે અપેક્ષાથી વાત હોય તેને તે રીતે યથાર્થ સમજવી જોઈએ. હા, ક્યું એસા કહા હૈ, ઉસકા રીઝનિંગ ક્યાં હૈ, ઇસ બાત કો હમે બિલકુલ પતા લગના ચાહીએ. અત્યારે તો આ વિષયમાં કેટલાક ગડબડ ઉભી કરી છે, કેટલાકે ગડબડ ઉભી કરી છે. એવો કહે છે કે જો કર્મબદ્ધ માનો તો બધું નિયત થઈ જાય અને તો આત્માને કઈ પુરુષાર્થ કરવાનો રહેતો નથી. નિયત થઈ જાય અને સભી નિશ્ચિત હો ગયા હૈ, અભી ક્યાં હૈ, જબ હોના હૈ હોગા એસા. ભાઈ, વસ્તુ વ્યવસ્થા તો નિયત અને સ્વાધીન જ છે. યાને વસ્તુ વ્યવસ્થા ને જગત મેં જો પ્રત્યેક દ્રવ્ય કા પરિણમન હો રહા હૈ વો તો નિશ્ચિત હૈ. ઓર કૈસા હૈ, પર સે નિરપેક્ષ હૈ, સ્વાધીન હૈ. ખ્યાલ મેં ક્યાં કહા? વસ્તુ વ્યવસ્થા તો નિયત અને સ્વાધીન જ છે. એમાં ફેરફાર કરવાની તું ચેષ્ટા કરે અને તું શું પુરુષાર્થ, એને તું શું પુરુષાર્થ કહે છે? બાપુ, એ પુરુષાર્થ નથી, પણ તારા મિથ્યા વિકલ્પ છે, મિથ્યા વાંઝના વિકલ્પ છે. એટલે એસે વિકલ્પો સે તુઝે મોક્ષ માર્ગ કી પ્રાપ્તિ નહીં હોને વાલી, કોઈ ફલ નહીં પ્રાપ્ત હોને વાલા હૈ. વાસ્તવમાં તો દ્રવ્યની પર્યાય તેના કાળે પરણા કરતાપના વિના સ્વતંત્ર સ્વાધીનપણે પોતાથી ક્રમબદ્ધ ઉત્પન્ન થાય છે એમ જેને યથાર્થ માયનું તે પુરુષાર્થી છે. કેમ કે એમ માનનાર પરથી હટીને સ્વાભિમુખ થાય છે અને સ્વાભિમુખ થવું ને રહેવું એ જ સમ્યક પુરુષાર્થ છે. તો બે કારણથી કાર્ય થાય એમ તત્વાર્થ રાજવાર્તિક આદિ સિદ્ધાંત ગ્રંથોમાં આવે છે ને. યાની યહાં તો અપના દ્રવ્ય હિ કાર્ય કરેગા એસા બતા, ત્યાં તો કહેતી કે દો કારણો સે કાર્ય હોતા હૈ એસા શાસ્ત્ર મેં બતાયા હૈ. વો કિસ કિસ તરહ સે હૈ ભાઈ? એ તો વાસ્તવિક કારણ જે નિશ્ચય ઉપાદાન, યાને નિશ્ચયને જો ડેફિનેટ હોતા હૈ જો કોઈ ઉપાદાન, તેના સહચરપણે બાહ્ય નિમિત્ત શું હોય છે તેનું જ્ઞાન કરાવવાની ત્યાં વાત છે. બાકી નિમિત્ત કઈ વાસ્તવિક કારણ છે એમ નથી. વાસ્તવિક કારણ એને ઉપાદાન કારણ નથી. વાસ્તવમાં જે સમય જે પર્યાય થાય તે પર્યાય તે સમયનું સત છે, તે કોઈથી આગુ પાછું ન થાય. ભાઈ, તે પર્યાય પરણા કારણે તો થતી નથી, પણ તેની પૂર્વ પર્યાયની અપેક્ષા નથી. અભી હમને દેખા થા સ્વામી કાર્તિકેયાનું પ્રેક્ષામાં આવે છે ને કે પૂર્વ પર્યાય યુક્ત દ્રવ્ય તે કારણ અને ઉત્તર પર્યાય યુક્ત દ્રવ્ય તે કાર્ય, એ વ્યવહારની વાત છે. એમ જબ નિમિત્ત ઓર ઉપાદાન કી બાત પડતે હૈ તબ ઇસમેં અનંતર પૂર્વ ક્ષણવર્તી પર્યાય વો જો હૈ તે વો પૂર્વ પર્યાય યુક્ત જો દ્રવ્ય હૈ. એ પૂર્વ પર્યાય કો કારણ નહીં કહા, પૂર્વ પર્યાય યુક્ત દ્રવ્ય કો કારણ કહા. ઓર ઉસકે આગે કી જો इमीडिएट नेक्स्ट उत्तर पर्याय उक्त जो द्रव्य है वो कार्य, ऐसी बात वहां पर लिखी है कहां, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा किसने लिखा है भाई, आप जानते हैं? हाँ, स्वामी कार्तिकेय, आचार्य कार्तिकेय, जो भी आपको बोलना है। हाँ, क्या कहा देखो भाई, सामान्य जे वस्तु छे ते समय ना पर्याय रूप विशेष मा उपजे छे, अने ते पर्याय एटले विशेष ते समय नु सत छे। बहुत बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, तो तत्वार सूत्र के ऊपर जो लिखी हुई राजवार्तिक नामक टीका है उसकी बात कर रहा है। देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये लास्ट दो लाइन है ना, सामान्य जे वस्तु छे ते समय ना पर्याय रूप विशेष में उपजे छे, यानी पूरा द्रव्य ही हर पर्याय में उपजता है, ये बात बताई। देखो देखो देखो, यहाँ तो बहुत अच्छी बात है जो समझने लायक है। यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, इसमें एक अपेक्षा ऐसी लगती है कि द्रव्य को ध्रुव बताते हैं और पर्याय को यानी उत्पाद व्यय को पर्याय बताते हैं, यानी द्रव्य और पर्याय को ऐसा डिवीजन करते हैं। और एक ऐसी भी अपेक्षा लगती है कि जो हर समय नई पर्याय जो उत्पन्न होती है तो वो पूरा द्रव्य ही पलटता है। व्यय होता है तो उस पर्याय से वह द्रव्य का ही व्यय होता है। क्यों? देखो देखो देखो, हमेशा पर्याय के द्वारा पूरा द्रव्य पलटता है, ऐसा कहते हैं। अब ऐसा होता होगा कि नहीं, समुन्द्र में केवल लहरें आती है कि पूरा समुन्द्र का पानी उसमें होता है, फिर वापस वो उसी में जाता है। ऐसे यहां कह रहे हैं कि ये द्रव्य और पर्याय इसको एक में करके द्रव्य की ही उत्पत्ति हुई है और द्रव्य का ही उस समय नेक्स्ट समय नए पर्याय का उत्पत्ति और पुराने द्रव्य का नाश। यहाँ अपेक्षा दूसरी है, तो उत्पाद वे ध्रुवत्व में के जो ध्रुव है वह पर्याय के साथ उत्पाद होता है और ध्रुव है वह पर्याय के साथ नष्ट होता है, यह भी अपेक्षा लगती है। ये दूसरी अपेक्षा यहाँ लगाई है। देखो देखो, ये निचली दो लाइन देखी ना हमने पेज नंबर 18 के पहले पैराग्राफ में, भाई सामान्य जे वस्तु छे यानी जे द्रव्य छे ते समय ना पर्याय रूप विशेष में उत्पन्न, ये सामान्य को ही द्रव्य कहा और पर्याय को विशेष कहा, तो क्या कहते हैं, सामान्य जे वस्तु छे ते समय ना पर्याय रूप विशेषो में उपजे छे। अभी किस कोई जीव को सम्यक दर्शन हुआ तो केवल पर्याय सम्यक तो है, पर्याय सम्यक तो है क्या, पूरा द्रव्य सम्यक रूप से परिणमित हो रहा है और कुछ काल के बाद वह पर्याय में मिथ्यात्व तो आ गया, तो द्रव्य तो सम्यक है और पर्याय मिथ्या हो गई है, ऐसा नहीं है। हम कहेंगे वह जीव ही मिथ्यात्वी है, ख्याल में है? तो यहाँ क्या कह रहे हैं, सामान्य जे वस्तु छेते ते समय ना पर्याय रूप विशेष में उपजे छे, अने ते अभी यहाँ तक व्यय की बात नहीं ली है, यहाँ उत्पाद में ही रुके हैं और कहते हैं अने ते पर्याय एटले ते विशेष ते समय नु सत छे, यानी देखो उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत कहा है ना, तो सत केवल त्रिकाली द्रव्य है ऐसा नहीं, उत्पाद भी सत है और मजे की बात तो है कि व्यय भी सत है, क्योंकि व्यय है ना वहां तो है, तो वह सत स्वरूप है, वो पर्याय नहीं है उसकी बात नहीं, व्यय जो है वो सत है, यहाँ उत्पाद है वो सत है। लो आवी बात समझाणो कहीं, आ तो पैसा तो आ पैसा दान मां देवा, मंदिरों बनावा, आरसनी मूर्ति स्थापवी, आ बधु शू छे, એમ કે આ બધું કોણ કરે ભાઈ? તેથે અવસ્થાની વ્યવસ્થા કરનાર તેથે દ્રવ્ય એટલે પરમાણુ છે. ક્યુકિ યહાં પરમાણુ કી બાત કી ને, પૈસા દાનમાં દેવા તો પૈસા ક્યાં હૈ? જીવ કી પ્રાણ હૈ ક્યા? પૂતગલ હૈ માના હૈ હમને? હા તો ક્યાં કહે રહે? આ પૈસા દાનમાં દેવા, મંદિરો બનાવવા, આરસની મૂર્તિ સ્થાપવી, તો એ બધું શું છે? તો કહે છે એ અવસ્થાની વ્યવસ્થા કરનાર તે દ્રવ્ય પરમાણુ છે. જીવ તેને કરતો નથી, કરાવતો એ નથી. આહા, બીજા દ્રવ્યના કર્યા વિના જ તે અવસ્થાની વ્યવસ્થા સ્વતંત્રપણે તેનાથી તેના કાળે થાય છે. અહો, ભગવાન વિતરાગ દેવે કહેલું તત્વ આવું સૂક્ષ્મ ગંભીર છે. પરને લઈને ઉત્પાદ થાય એમ તો નહીં, પણ વ્યયને લઈને ઉત્પાદ થાય એમ નહીં. યાને પૂર્વ પર કા વ્ય હુઆ ઇસલી ઇસકા ઉત્પાદ હુઆ એસા ભી નહીં હૈ. ઉત્પાદ થી ઉત્પાદ છે, ઉત્પાદ પણ ઉત્પાદનો તે સમયે ત્યાં કાળ છે અને દ્રવ્ય ત્યાં ઉપજે છે. આવી વાત છે. યે કુછ બહોત ગંભીર લગ રહા હૈ ક્યા? હા બેન, ખ્યાલ મેં આતી ના? બહોત આસાન હૈ. હા, ઓર કિતની મતલબ અલગ અલગ એંગલ સે બાત કો સમજાયા હૈ. પંડિત દેવકીનંદ સાથે આ ક્રમ નિયમિતની વાત થયેલી ત્યારે તેઓ બોલ્યા, ઓહો, એ દેવકીનંદન કોણ થે માલુમ હૈ આપકો? આપકો માલુમ હોના છે નહીં? સો આપકો માલુમ નહીં તો બાકી લોગ કહાં? હા હા હા, યે દેવકીનંદન જો હૈ એ ગોપાલદાસજી બરૈયા કે શિષ્ય થે. और इनका स्टैचू कारंजा में खड़ा किया. हाँ, और वे वहां रहते थे. कौन? गोपालदास जी बरैया वहां जाते आते थे, और ये देवकीनंदन जी वहां थे. तो ये स्वामी जी के कॉन्टेम्पररी है ना. तो क्या कह रहे थे ना, देव पंडित देवकीनंदन साथ आ क्रमबद्ध नहीं बात.
बड़ी बड़ी सभाओं ने उन्होंने जैन न्याय की बात जो वाद वगैरह होते थे आर्य समाज वगैरह के साथ, तो उनको परास्त कर देते थे. उनको मानना पड़ता है कि जैनिज्म ही सच्चा है. उस जमाने में ऐसे वाद की वो पद्धति थी. देवकीनंदन उनके लास्ट में वो कारंजा में आके रहे थे. वो पंचाध्यायी पर इन्होंने भी एक टीका लिखी देवकीनंदन जी ने. हमने जो यहाँ पढ़ी थी वो सरनाराम जी की थी. ये पंडित देवकीनंदन बहुत बहुत ही यानी उत्तम ऐसे पंडित थे,
जानकार थे. પંડિત દેવકીનંદન સાથે આ ક્રમ નિયમિતની વાત થયેલી ત્યારે તેઓ બોલ્યા, ઓહો, આ તો અપૂર્વ વાત છે ભાઈ. આ તો પરમેશ્વર ત્રિલોકના જિનેશ્વર દેવની વાણી. આગમ આગમ તો આંખ ચક્ષુ છે. મુનિરાજને આગમ ચક્ષુ કહેલ છે ને? આહા હા, એવા આગમમાં આ કહ્યું છે કે ભગવાન તું જ્ઞાન સ્વરૂપ છો અને તારી જે જે પર્યાયો વિકારી કે નિર્વિકારી થાય છે તે સર્વ પર્યાયો ક્રમસર પોતપોતાના કાળે થાય છે. કળશ ટીકામાં, ચોથા કળશની ટીકામાં આવે છે કે સમ્યક્ત્વ વસ્તુ યત્ન સાધ્ય નથી, સહજ રૂપ છે. ક્યાં કહા? એ તો ઓર સિક્સર મારે એસી વાત. એ તો ઉપદેશ દેંગે તો જરૂર કહેંગે કે એસા આપકો પ્રયત્ન કરના ચાહીએ. આપકો પર સે અપના ઉપયોગ હટા કે મતિ જ્ઞાન કા ઉપયોગ જો બહાર લગ રહા હૈ ઉધર સે સમેટ કર યહાં લાના હૈ. ઉપદેશ મેં એસા હી કહેંગે. લેકિન યહાં ક્યા કહે રહે હૈ કે કલશ ટીકાકાર કોણ હૈ ભાઈ? કલશ ટીકાકાર દેખો દેખો કલશ ટીકામાં. હા બરાબર, ચોથા કલશની ટીકામાં આવે છે સમ્યક્ત્વ જે છે તે કેવું છે? યત્ન સાધ્ય નથી, યાને પુરુષાર્થ કરને સે હોતા હૈ એસા નહીં હૈ, પ્રયત્ન કરને સે હોગા એસા નહીં હૈ, સહજ રૂપ છે. यानी विश्व के जो अनंत द्रव्य है, अनंतानंत उनके गुण है, उनके समय समय होने वाली पर्याय जो है वह सहज हो रही है, ख्याल में है। लेकिन इस जीव को उपदेश जब देंगे, चरणानियों की भाषा में जब बताएंगे, तो कहेंगे कि तुझे ऐसा करना चाहिए, तेरा उपयोग हटाकर अपने स्वद्रव्य में लाना चाहिए, तो वहाँ प्रयत्न साध्य कहते। यत्न साध्य यानी क्या? प्रयत्न साध्य,
यहाँ पुरुषार्थ तो होगा हो, परंतु अभी यहाँ काल की मुख्यता है ना, इसलिए वहाँ यानी यत्न में जो हम सोच समझ कर करने की बात होती है उसको यहाँ यत्न गिना है, नहीं तो पुरुषार्थ से नहीं होता ये बात इसमें नहीं, उसको गौण कर दिया। यहाँ काल की मुख्यता बताई, क्योंकि हमने देखा था जब सहज होता है वह भी अपने समय में होता है, वहाँ भी पांच समवाय लगते ही है, परंतु उन पांच में से यहाँ काल लब्धि की मुख्यता करके बताइए।
आपको क्या बताना है, समझ में आया? कोई भी कार्य होगा तो पांच तो समवाय होंगे ही, यहाँ तो काल की अपेक्षा से बात कही है, वो तो सहज होगा, वहाँ पुरुषार्थ को भी थोड़ा सा गौण कर दिया। क्या विशेष आम कहूं छे के
ते किस अपेक्षा से बता रहे कि यत्न से नहीं होता, उसको आगे बता रहे।
ते जीव संसार मा भमता भमता जारे अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र रहे छे त्यारे ज सम्यक तो उपजवाने योग्य छे, आनु नाम काल लब्धि केवाय छे। यानी ये क्या कहना चाहते हैं?
उस दिन अपनी चर्चा निकली थी ना, ये एक पुद्गल परावर्तन काल बाकी है, उस जीव को बहुत प्रयत्न करेगा तो उसको समय दर्शन होगा कि नहीं होगा, क्यों डॉक्टर क्या कहते हैं? हाँ, तो उसको यहाँ काल लब्धि में गिना है, यानी काल की भी ये जो अपेक्षा ली है उतनी ली है यहाँ पर। हाँ, मोक्ष के कितने अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा दूर जाना, अर्लीएस्ट। किसी को ऐसा भी होगा उसी भाव में प्राप्त हुआ समय और उसी भाव में मोक्ष भी चला गया, परंतु फिर भी मोक्ष के कितने पहले हो सकता है, तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल पहले हो सकता है, उससे पहले नहीं होगा, उससे लंबा काल अभी बाकी होगा मोक्ष होने में, तो वहाँ समय तो नहीं हो सकता।
देखो, बहुत बार स्वामी जी ऐसा कहते हैं, भगवान ने जयरे जोयु छे त्यारे थछे, ऐसा जब कहते हैं तो जब कह रहे कि तो ऐसा जो मानता है उसने भगवान का स्वीकार किया है कि नहीं, नहीं किया है तो केवल ज्ञानी ने जोया हो तो इन्हें तो भव हुए ज नहीं, के भव हुए ज नहीं एटले इन्हें ओछा भव छे। ख्याल में जो अर्ध पुद्गल परावर्तन में जो कोई भव होने हैं वो जो होंगे वो तो लिमिटेड ही है, ख्याल में। आनु नाम काल लब्धि के, अभी चौथी लाइन, यद्यपि सम्यक्त्व रूप जीव द्रव्य परिणमे छे तथापि काल लब्धि विना करोड़ उपाय जो करवामा आवे तोपन जीव सम्यक्त्व रूप परिणाम ने योग्य नथी एवो नियम छे। आती जाणवू के सम्यक्त्व वस्तु एटले सम्यक्त्व नाम की जो कोई चीज है वह यत्न साध्य नथी सहज रूप छे, ये बात आप। हाँ,
बोलो। यानी कहा ना, काल लब्धि विना करोड़ उपाय जो करवामां आवे तो पण, तो इस करोड़ उपायों में वो सच्चा पुरुषार्थ लेना कि नहीं लेना? हाँ, जिसकी काल लब्धि उस पर्याय की नहीं है उस पर्याय के योग्य पुरुषार्थ वहां नहीं होगा, वो रह जाएगा उतना।
क्या आ पहला ऊपर आम आव्यू छे ने के भव्य जीवो मां केटलाक जीवो मोक्ष जवाने योग्य छे, तेमने मोक्ष पहुंचवानू काल परिमाण छे, विवरण आ जीव आटलो काल जता मोक्ष जशे एवी नोंध केवल ज्ञान मां छे। जो आ जीव आटलो काल वीतता मोक्ष जशे એવી નોંધ કેવળ જ્ઞાનમાં છે એટલે શું કે આ જીવને આ કાળે સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર અને કેવળ જ્ઞાન થશે એમ એની બધી પર્યાયો કેવળ જ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષ જાણવામાં આવે છે. આહા હા, જે સમય જે દ્રવ્યની જે પર્યાયો જે પ્રકારે થવા યોગ્ય છે તે બધી પર્યાયો એકી સાથે કેવળ જ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષ થાય છે. અહો, કેવળ જ્ઞાનનું આવું કોઈ અદ્ભુત દિવ્ય સામર્થ્ય. દેખો, યે લોગો કો તો એસા લગતા હૈ ના કે કેવળ જ્ઞાન ને જાણા હૈ તો અભી હમારા પુરુષાર્થ ક્યાં રહી ગયા. હા, અચ્છા, વો જો આયા હોગા વો આયા હોગા, હમ દૂસરી વાત બતા રહે આપકો. હા, તો એસા હોતા હૈ વિશ્વ મેં. એક એક્ઝામ્પલ હમ લેતે હૈ, એક જવાન લડકા ઓર એક ખૂબસૂરત લડકી હૈ, ઇન દોનો કા આપસ મેં આજકલ કી ભાષા મેં અફેર ચલ રહા હૈ. તો દોનો કે મા બાપ જાણતે હૈ કે મેરી લડકી ફલા ફલા ઓર લડકે કે સાથ રહેતી હૈ, ઓર વો લડકે કે માતા પિતા ભી જાણતે કે યે ફલા ફલા લડકી કે સાથ ઘૂમતા હૈ, જો ભી હૈ. તો યે દોનો હી મા બાપ યાની ચાર જન જાણ રહે હૈ, इसके माता पिता, उसके माता पिता, फिर भी इनका जो कुछ कार्य चल रहा है वो चल रहा है. तब अभी वो जान रहे हैं तो इनको पता लगा कि ये जान रहे हैं, दोनों को, कि अपने माता पिता जान रहे हैं. तो उनका जो कुछ कार्य चल रहा था, एक दूसरे पे जो प्रेम का वर्षा हो रहा था, वो बंद पड़ेगा कि नहीं? नहीं पड़ेगा ना. तो केवल ही भगवान जानेंगे कि ये जीव कभी मोक्ष जाना है, ये जीव कभी सम्यक तो प्राप्त करना है. तो वो जानते, अरे अभी हमारा क्या पुरुषार्थ है, हम कैसा करेंगे, ऐसा थोड़ी है. कोई जान रहे तुमको, थोड़ी उसमें कोई कंट्रोल कर रहे हैं, वो थोड़ी आपको बदल रहे हैं, कुछ नहीं है. वो बदल ही नहीं सकते, वो तो मूल बात है. लेकिन कोई जाने, एक नहीं अनंत केवली जान रहे, तो तेरा कौन सा उंधा पुरुषार्थ रुका हुआ है. क्रमबद्ध की बात जो है ना, बिल्कुल मतलब आंखें खोल दे ऐसी बात है. तो क्या कह रहे, देखो, केवल ज्ञान मां नोन छेम कयूं एटले कि केवल ज्ञान नी एक समय नी पर्याय मां त्रण कारणार समस्त द्रव्य गुण पर्याय एक साथे प्रत्यक्ष थाय छे, यानी जानने में आते हैं. वस्तु नी भूत वर्तमान ने भविष्य नी जे रीते जे पर्यायो थई भूतकाल मां थाय छे वर्तमान मां અને થશે એ ભવિષ્યમાં, તે સમસ્ત પર્યાયોને કેવળ જ્ઞાન વર્તમાન પ્રત્યક્ષ જાણે છે. યાને અભી હાલ મેં જો આનંદ કાલ કે બાદ જો કુછ પરિણમન હોના હૈ વો અભી જાન રહે, કૈસા પ્રત્યક્ષ જાન રહે. ભવિષ્યની પર્યાય થઈ નથી, માટે ભવિષ્યની પર્યાય થશે ત્યારે જાણશે એમ કોઈ માને તો તે બરાબર નથી. અરે ભગવાન, સાંભળ તો ખરો, ક્ષાયિક જ્ઞાન કોને ન જાણે તેને શું અપેક્ષા છે? કાંઈ નહીં. પ્રવચન સાર ગાથા 47 ની ટીકામાં આચાર્ય દેવ કહે છે, અતિ વિસ્તારથી બસ થાવ. એક કોણ સે ટીકાકાર એસા બોલ રહે? આચાર્ય દેવ. કોણ સે આચાર્ય દેવ બોલ રહે? અમૃતચંદ્ર. બહુત અચ્છા. તો કહે રહે હૈ, અતિ વિસ્તારથી બસ થાવ, અલમ અતિ વિસ્તાર એન, અનિવારિત જેનો ફેલાવ છે. અનિવારિત યાને જિસકા હમ કંટ્રોલ નહીં કર સકતે હૈ, નિવારણ નહીં કર સકતે. અનિવારિત જેનો ફેલાવ છે એવા પ્રકાશવાળું હોવાથી ક્ષાયિક જ્ઞાન અવશ્યમેવ સર્વદા સર્વત્ર સર્વથા અને સર્વને જાણે છે. યે સર્વદા યાને તીન કાલ મેં, સર્વત્ર યાને ક્ષેત્ર કી અપેક્ષા, સર્વથા યાને પરિપૂર્ણ રીતે, સર્વને યાને ક્વોન્ટિટી. ભાઈ, ભવિષ્યની જે પર્યાયો જે સમય જે પ્રકારે થશે તે સર્વને કેવળ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ વર્તમાન પ્રત્યક્ષ જાણે છે. બાપુ, તને કેવળ જ્ઞાન બેસવું કઠણ પડે છે, तो क्रमबद्ध पण वेचू कठन छे। यही रुकेंगे हम। आपको कुछ बोलना था? जावानी के ज्ञान तय सूजे लो कालो सोवाणी मस्तकन मो सदा देत हो। प्रेरणा में